उनके इन्होंने चोरी किए थे इन लोगों ने। और ये जब ऐप चलाई थी इन्होंने, मोबाइल बैंकिंग ऐप बॉब वर्ल्ड, तो उसमें इनके लिए जो इनका बैंक का स्टाफ, मैनेजर्स, गार्ड्स, उनके रिलेटिव्स और बैंक एजेंट्स जो थे रिमोट एरियाज में, उनके लिए इजी हो गया था इनके लिए पैसे चुराने। कुछ लोगों के तो पैसे जो थे वो ओवर 1,000 डॉलर्स थे, यानी कि इंडिया के आप समझें कि 1.5-2 लाख रुपए बन जाते हैं, और कुछ लोगों ने तो उससे भी ज्यादा जो थे गवाए थे। तो ऑल टुगेदर ये 27,000 डॉलर्स जो है बनते हैं, और एक कुछ एजेंट्स ने 1,330 के करीब, कुछ ने 2,140, कुछ ने 4,000 से ज्यादा जो थे डॉलर्स, यानी कि ये हैं पैसे, रुपीज नहीं है, उसमें पैसे जो है लोगों के चोरी किए थे यानी फ्रॉड से। तो ये सारी बातें उस वक्त ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है जब जो आरबीआई, जो इनका इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने ऑडिट की थी, और ऑडिट के बेस पे पता चला था कि ये लोग जो है फ्रॉड कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर आज अनफॉर्चुनेटली बिहार के एरिया में एक ट्रेन जो थी वो डिरेल हुई थी, एक्सप्रेस ट्रेन, उसकी वजह से 4 लोगों की डेथ हुई है और बहुत सारे जख्मी हो गए हैं। यहां पे जो ट्रेन है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से दिल्ली से ये जा रही थी कमा खाया जंक्शन असम की तरफ, जब ये जो है ये हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, 21 कोचेस जो थी वो डिरेल कर गई थी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जो जनरल मैनेजर है उन्होंने कहा जी हमने इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई है, अभी कॉज ऑफ डिरेलमेंट पता नहीं चलेगा है, मतलब चला है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अंडर वे है। जून के अंदर भी हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी घटना हुई थी और उसको 2 डेकेड्स का सबसे बैड जो था वो इंसिडेंट कहा जा रहा था, जो ओडिशा में हुई थी, जब ये रेल जो ट्रेनें जो थी क्रैश कर गई थी और उसके अंदर जो है तकरीबन 288 लोगों की डेथ हुई थी। तो आज ये जो है एक और यहां पे है उसके ऊपर है। जीना तमाम साहिबा जो है जी, उन्होंने अपना एक शेयर किया है अमिताभ बच्चन के साथ कुछ बातें। उन्होंने कहा जी कि मैं इनको करना चाहती थी 81st बर्थडे पे विश, लेकिन मैं कर नहीं सकी क्योंकि एक प्रोड्यूसर जो थे उन्होंने मुझे इनकी वजह से ह्यूमिलिएट किया था, जिसके के बाद फिर बिग बी ने जब इनसे अपॉलोजी की तो उन्होंने सारा वाकया सुनाया कि जी मैं तो बहुत जल्दी एक दफा शूट पे आ गई थी और मैं तो इंतजार कर रही थी, और मैंने तो लोगों को कहा कि जब अमिताभ आए तो मुझे बताना, क्योंकि अमिताभ की ये रेपुटेशन है कि वो हमेशा वक्त से पहले आते हैं, बहुत ज्यादा पंक्चुअल हैं, और वो सेट पे आके बैठे रहते हैं और वो किताब पढ़ते रहते हैं जब तक कि शूट का टाइम नहीं हो जाता है, और फिर जब शूट का टाइम होता है तो वो काम शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं जी वो एक टाइम था जब अमिताभ लेट आए, तो मैं बैठी हुई थी अपनी गाड़ी में इंतजार कर रही थी, मैं रिहर्स कर रही थी, लेकिन अमिताभ लेट आए 1 घंटा, और जब मैं बाहर आई तो प्रोड्यूसर ने मुझे डांटा तो मैं रो पड़ी, तो बाद में फिर अमिताभ ने मेरे से अपोलोजाइज किया, तो इट्स ऑल गुड नाउ। रत्ना फाटक शाह जो हैं उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने कहा जी कि ऐसा इकोसिस्टम बन गया है कि जिसमें वहीदा रहमान, माशाल्लाह से 85 इयर्स एज है इनकी भी, उनको उनके पोटेंशियल के मुताबिक रोल्स नहीं दिए जाते हैं। जैसे कि मैं देखती हूं कि मैरिल स्ट्रिप जो कि 74 एज है जिनकी, हेलन मिरन जो है 78 की, उनको उनके पोटेंशियल के मुताबिक बहुत धांसू किस्म के रोल्स दिए जाते हैं। वहीदा रहमान साहिबा बहुत ज्यादा एक ना सिर्फ फैबुलस खातून है बल्कि बहुत ही फैबुलस एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनके स्टेचर के मुताबिक जो वो डिजर्व करती हैं रोल्स नहीं दिए जाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था दीप्ति नेवल के बारे में कि वो भी जिस तरह के रोल्स डिजर्व करती हैं उनको नहीं दिए जाते हैं, तो ये बड़ी ज्यादती है। मुझे लगता है कि इनके पोटेंशियल के मुताबिक इनको देना चाहिए। और जनाब आज जो वर्ल्ड कप के अंदर मैचेस थे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, क्विंटन डिकॉक ने जबरदस्त सेकंड सक्सेसिव सेंचुरी बनाई वर्ल्ड कप में, और साउथ अफ्रीका ने आज जबरदस्त किस्म की, जो ये 5 टाइम चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया, इसको जो है वो पैक कर दिया और 134 रन की इनको डिफीट दी। इन्होंने पहले साउथ अफ्रीका ने बनाए थे 311/7, ऑस्ट्रेलिया जो थी उसने अपनी जो 6 विकेट्स थी वो सिर्फ 70 रन्स जब बोर्ड के ऊपर थे उस पे उन्होंने लूज की थी, और इवेंचुअली इनको डिसमिस किया ऑस्ट्रेलिया की टीम को साउथ अफ्रीका ने फॉर 177 रन्स विद 55 बॉल्स टू स्पेयर। और अब जो ऑस्ट्रेलिया है उसने दोनों मैच जो है वो लूज कर दिए हैं, पहले इंडिया से भी 6 विकेटों से हारा था और आज फिर से ये जो है ये साउथ अफ्रीका से हार गया है। यहां पे 25th ओवर में ये इनकी हालत थी कि 95/6 थे, उसके बाद फिर मार्कस लेबुशेंग आए उन्होंने 46 बनाए और मिशेल स्टार्क ने 69 रन इन्होंने बनाए फॉर 7th विकेट पार्टनरशिप, लेकिन फिर भी जो है ये आगे जो है नहीं चल सके और पूरी इनकी जो इनिंग्स थी वो कलैप्स कर गई। 2 साल जो है जी next 2 years उसमें जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा तैयारी करेंगे वर्ल्ड कप फुटबॉल जो होने वाला है उसके लिए, तो उसमें अब और भी कुछ जो है एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि यमन की टीम आ रही है, श्रीलंका की टीम्स आ रही हैं, और बहुत बड़ी बड़ी वहां पे टीम्स हैं जिनके साथ इनके मुकाबले होंगे, खासतौर पे जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर होंगे, जिसमें कि इनके ग्रुप में यूएई, बहरेन, नेपाल या के लाओस हो सकता है। तो ये बहरहाल बड़े एक्साइटेड हैं यमन, क्योंकि अभी ये वॉर से बाहर आए हैं और ये चाहते हैं जी कि हम अपना कुछ मेडल यहां पर शो कर सकें। इनका जो नंबर है यमन की टीम का 156 रैंक है फीफा की रैंकिंग में, और श्रीलंका जो है वो 202 के ऊपर खड़ा हुआ है। तो जो बेस्ट ऑफ 18 टीम्स होंगी उनमें से जो है एक एशिया की जो 8 ऑटोमेटिक वर्ल्ड कप स्पॉट्स हैं उसमें जाएगी, तो इसको अब इंक्रीज किया गया है 2-4 फ्रॉम 2022। तो इनके लिए बड़े अच्छे चांसेस हैं कि ये कर सकते हैं। और जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट फॉर्मर फॉर्मूला 1 के जो बॉस थे बर्नी एक्लस्टोन, उनके लिए 92 ईयर्स उनकी एज है, लेकिन इनको अब जो है जेल टर्म नहीं दी गई है, हालांकि इन्होंने गिल्टी प्लीड किया था एट लंदन साउथ वॉर क्राउन कोर्ट में कि इन्होंने मिसलीड किया था यूके की टैक्स अथॉरिटीज को फॉर ओवरसी एसेट्स वर्थ ओवर 492 मिलियन यूएस डॉलर्स, और इन्होंने एग्री किया है कि ये सिविल जो सेटलमेंट है ये करेंगे एचएम रेवेन्यू एंड कस्टम्स के साथ, और उनको पे करेंगे 798.4 मिलियन टू कवर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज फॉर 18 टैक्स ईयर्स बिटवीन 1994 से 2022। और इन्होंने एचएमआरसी को बताया था जुलाई 2015 में कि इनका जो सिंगल ट्रस्ट है इन फेवर ऑफ हिज डॉटर्स, उसमें ना तो ये बेनिफिशरी हैं ना तो ये सेटलर हैं, लेकिन ये झूठ था, ये थे उसके अंदर। और इन्होंने पैसे भी भेजे थे एट द ट्यून ऑफ 509 मिलियन डॉलर्स टू द बैंक अकाउंट इन सिंगापुर इन 2010। तो फिर जब इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई तो पहले तो माने नहीं थे और आज ये मान गए हैं, लेकिन इनकी एज को देखते वे उन्होंने कहा कि इनको जेल तो नहीं भेजी जाएगी लेकिन इनको ये पैसे सारे देने पड़ेंगे। तो जनाब ये थी हमारी सारी खबरें, और अब हम जाएंगे, आज हमारा जो स्पेशल सेगमेंट है वो क्रिकेट के ऊपर, उसमें मेरी आज बातचीत जो होने वाली है थोड़ी देर में वो होने वाली है मिस्टर सगीर के साथ, आपको पता ही है आमिर, हम जो है उनके साथ बात करेंगे, और उसमें
स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट
कैसर सगीर, हाँ उनसे बात करेंगे, तो वो आपको सारे जो आने वाले मैचेस हैं और जो आज का भी मैच है उसके ऊपर अपडेट्स देंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो, 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
ब्रैम्पटन ऑन स्टेज 12 से 18 अक्टूबर तक द रोज ब्रैम्पटन पर अहद रजानीद को हैमलेट के किरदार में देखकर खुश और वेलकम करते हैं। हैमलेट जो आजकल के दौर के लिए गजबनाक, तेज रफ्तार, इंतकाम और दागदार मोहब्बत की कहानी है। क्या आप हमारे डेनमार्क के शहजादे के साथ बाइज्जत, खुशहाली, पागलपन के दरमियान लाइन पर चलने की हिम्मत करते हैं? ये तब्दीली सिर्फ सच्चा सानिया ही ला सकता है। देखना मत भूलिएगा हैमलेट 12 से 18 अक्टूबर तक द रोज ब्रैम्पटन में। सेल टिकट्स खरीदने के लिए विजिट करें brampton-onstage.ca।
जस्टिन ट्रूडो तुहाडे आंढ गुआंढ च क्रैक अते कोकेन दे कारोबार नूं कानूनी बना रहे हन, इसे करके तुहानूं अपने आले दुआले जुर्म अते मुजरम ते चोरी चकारी नजर आ रही है। पीयर पोलिवर इन्हां सारे नशियां दी फरोख्त ते पाबंदी लाउणगे अते नशियां वाले मरीजां दे इलाज दा इंतजाम करनगे ते दोषियां नूं जेल भेजणगे। दिस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाई पीयर पोलिवर एंड कंजरवेटिव पार्टी ऑफ कैनेडा।
You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.
जी, तो जैसे हमने आपको भी बताया था खबरों से पहले कि हमारा स्पेशल सेगमेंट 6 बजे शुरू होगा एक हमारे और नए एक्सपर्ट के साथ। तो हम आज बात करने जा रहे हैं कैसर सगीर साहब से। इन्होंने पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए खेला हुआ है और भी बहुत सारे जो हमारे बड़े बड़े क्रिकेट गुरुज गुजरे हैं या के लेजेंड्स गुजरे हैं उनके साथ बड़ा इन्होंने टाइम गुजारा है, उनके इंटरव्यूज लिए हैं, बड़ा क्रिकेट के ऊपर इनका नॉलेज है। तो आज हम कैसर से बात करेंगे। कैसर, वी वेलकम यू इन आवर शो।
जी, थैंक यू सो मच।
जी अच्छा कैसर, एक तो जो आज का मैच है उसके बारे में जरा बताइए, क्या धांसू टीम है अदरवाइज तो ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन क्या बैश किया आज साउथ अफ्रीका ने। और लग रहा है मुझे जैसे 300 तो अब जैसे है बेंचमार्क हो गया, 300 से कम तो जो भी कोई टीम करेगी हारेगी।
देखिए, ये जो आपने दिलचस्प है, मैं चाहूंगा कि इस हवाले से थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बहुत अच्छी होगी। वर्ल्ड कप का आगाज हुआ था 1975 में और पहली मरतबा जो टीम चैंपियन बनी थी वो थी वेस्ट इंडीज। उसने फाइनल में 60 ओवर्स में, उस वक्त वर्ल्ड कप होता था 60 ओवर्स का, तो उन्होंने 291 रन किए थे, लेकिन जो मुखालिफ टीम थी ऑस्ट्रेलिया वो चेस नहीं कर सकी, वो 60 ओवर्स में 274 तक पहुंचे थे। फिर उसके बाद 1979 में दूसरा वर्ल्ड कप हुआ, वेस्ट इंडीज ने फिर पहले बैटिंग की और उस वक्त उन्होंने तकरीबन कोई रन किए 286 करीब, लेकिन इंग्लैंड वो टारगेट चेस नहीं कर सका, तो वेस्ट इंडीज सेकंड टाइम भी चैंपियन बनी। तीसरी मरतबा फाइनल था उनका इंडिया से 83 वर्ल्ड कप में। तो 83 वर्ल्ड कप में जो इंडिया है उसने सिर्फ 183 रन किए थे फाइनल में, याद रखिए कि सिर्फ 183, लेकिन वेस्ट इंडीज वो 183 चेस नहीं कर सकी, बल्कि मेरा ख्याल है कि अराउंड 140 रन उन्होंने किए थे और वो फाइनल हार गई। इस तरीके से जो यानी आप देख लें कि पैटर्न क्या चल रहा था कि इतना छोटा टारगेट भी करना मुश्किल था। उसके बाद 87 में ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना, तब भी उनका जो स्कोर था कोई बहुत बड़ा नहीं था, 300 से नीचे रन उन्होंने किए थे और वो चैंपियन बने थे। अगर आप याद करें 1992 जिसमें हमारी टीम पाकिस्तान चैंपियन बनी थी, तो हमने भी 249 किए थे और इंग्लैंड को टारगेट दिया था 250 का, लेकिन इंग्लैंड की पूरी टीम 227 तक पहुंची थी। तो 60 ओवर्स थे या 50 ओवर्स थे, 250 रन, पौने 300 रन एक बहुत बड़ा टारगेट समझा जाता था, लेकिन अब पूरा एक कहने के सेटअप ही चेंज हो गया और मैं समझता हूं इसका क्रेडिट जाता है इंग्लैंड को। इंग्लैंड वो टीम है जिसने वनडे में तेज क्रिकेट खेलने को स्टार्ट किया और अब तकरीबन तमाम टीमें उनको फॉलो कर रही हैं और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 300 रन करके भी आप ये नहीं सोच सकते कि आप मैच जीत गए हैं। इसके एक मिसाल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच भी था जिसमें श्रीलंका ने 344 किया लेकिन पाकिस्तान ने 345 भी चेस कर लिया। तो इसलिए जो आज का मैच हुआ है या जो बाकी मैचेस हुए हैं उसमें अब आपके लिए बड़ा मुश्किल है ये कहना कोई भी, यानी मैं समझता हूँ कि 350 पे भी आप ये महसूस कर रहे हो सकते हैं कि पता नहीं आप सेफ हैं या नहीं है, लेकिन मजा इसी तरह की क्रिकेट में है।
अच्छा कैसर, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनती जा रही है और अब तो जो मदर ऑफ ऑल गेम्स है वो आने वाली है पाकिस्तान और इंडिया की सैटरडे को। तो वैसे तो जो तेंदुलकर साहब हैं उन्होंने कहा जी फाइनल के अंदर या सेमीफाइनल्स में तो मैं चार ही टीमें देख रहा हूं, एक इंडिया, एक इंग्लैंड, एक ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड, तो उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, नंबर वन, मेरे दो क्वेश्चंस हैं कि इस टूर्नामेंट में आगे अब चल के कैसे रहेंगे क्योंकि टफ मैचेस तो अभी आने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इंडिया से मैचेस हैं, और ये जो अभी सैटरडे का मैच इंडिया से होने वाला है उसमें आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं?
देखिए, बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना इस वक्त। अगर आप टीवी चैनल्स ऑन करें तो उसमें बड़े बड़े स्टार्स बैठे हुए हैं, तकरीबन हर चैनल ने यह सिलसिला शुरू किया है कि किसी चैनल पे आपको राशिद लतीफ नजर आएंगे, मोहम्मद हफीज नजर आएंगे और दूसरे स्टार्स नजर आएंगे, दूसरे चैनल पे और बड़े स्टार्स हैं। बड़ा मुश्किल हो गया प्रेडिक्ट करना, जिस तरह की क्रिकेट चल रही है ना इसमें बहुत मुश्किल है। इसमें ज्यादा बेहतर यही होगा कि कहना कि उस रोज डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, विकेट की कंडीशन क्या है और टॉस कौन सी टीम जीतती है और वो जो आपके कह लें कि फर्स्ट टेन ओवर जिन्हें हम पावर प्ले कहते हैं उसमें कौन सी टीम अपनी ग्रिप मजबूत करती है, बैटिंग में बैटिंग करने वाली या बॉलिंग करने वाली। लेकिन जो सचिन तेंदुलकर की आपने बात की है उसमें मुझे उनके जवाब में इंग्लैंड के जो साबिक कैप्टन है माइकल एथरटन, उन्होंने ये कहा है कि मैं देख रहा हूं पाकिस्तान को जीते हुए कल जो अपना सॉरी सैटरडे का मैच है उसमें, उसने कहा कि मैं पाकिस्तान को इंडिया में इंडिया को हराते हुए देख रहा हूं। क्यों? उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। देखिए पाकिस्तान मतलब टीम जो है ना वो हमेशा से ऑफ एंड ऑन टीम रही है। इवन मुझे याद है वेवन रिचर्ड मेरे हर दौर में वो फेवरेट प्लेयर बैट्समैन रहे हैं। वेवन रिचर्ड्स भी जबकि वेस्ट इंडीज का एक रूल था जिसे काली आंधी कहा जाता था, जिससे पूरी दुनिया मानती थी और तमाम टीमें उसे खेलते हुए डरती थी, वेवन रिचर्ड्स ये कहते थे कि पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल है, यानी किसी भी दिन ये टीम कुछ भी कर सकती है। इसलिए सचिन तेंदुलकर यकीनी बात है कि वो अपनी टीम के बारे में कहेंगे या वो जिन्हें वो एज एन एक्सपर्ट या एज ए फॉर्मर बैट्समैन वो देख सकते हैं कि ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को आप इस जो फाइनल फोर है ना उसे निकाल नहीं सकते। पाकिस्तान की टीम देखिए, अब उन्होंने जो श्रीलंका के खिलाफ खेला है, आपने 48 साल में 48 ईयर्स हो गए वर्ल्ड कप को शुरू हुए 1975 से, आज तक दुनिया की कोई टीम चाहे वो इंग्लैंड थी या चाहे ऑस्ट्रेलिया थी, ऑस्ट्रेलिया 5 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बनी है, लेकिन आज तक वो इतना बड़ा टारगेट चेस नहीं कर सके जो पाकिस्तान ने कर दिखाया है। तो इसलिए अगर कोई टीम या बैट्समैन ये कहता है कि पाकिस्तान फाइनल फोर में नहीं है तो आई विल नॉट एग्री विद हिम। मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम मतलब अनप्रिडिक्टेबल है और यही इसकी खासियत है। और इंशाल्लाह मुझे ये लग रहा है कि इंशाल्लाह फाइनल फोर हम जरूर खेलेंगे।
पाकिस्तानी जो कैंप है उसमें बहुत सारी इंजरीज चल रही हैं। आपको पता है कि श्रीलंका के साथ भी जो मैच चल रहा था उसमें भी क्रैम्प्स आ गए थे रिजवान को, फिर उसके बाद अभी शाहीन शाह अफरीदी का भी कह रहे हैं कि 100% नहीं है, और वो तो उनकी बॉलिंग में उस दिन नजर ही आया। हसन अली ना होता तो हमारी और भी हालत पतली होती। शाहीन शाह वो फोर्स नहीं दिखा रहा, नसीम शाह जो हैं वो नहीं हैं, तो जो बॉलिंग हमेशा से पाकिस्तान की स्ट्रेंथ होती थी इस वक्त तो वो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। और हम तो ज्यादातर जो है बॉलिंग के बेस के ऊपर ही जीतते थे क्योंकि हमारा तो बैटिंग के हमेशा ही मसले रहे हैं, और बैटिंग में भी बाबर आजम भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मिडल ऑर्डर तो हमेशा से हमारा वीक था। तो ये जो आपकी प्रिडिक्शंस हैं कि पाकिस्तान जा सकता है लास्ट फोर के अंदर, तो ये किसके ऊपर आप बेस कर रहे हैं ये आपका जो एनालिसिस है वो?
देखिए उसमें आपने जैसे बात की ना कि हमेशा से हमारा जो स्ट्रांग पॉइंट था वो बॉलिंग था, इसमें कोई शक नहीं है। और जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ है या उससे पहले आप एशिया कप में चले जाएं तो जो पहला मैच था पाकिस्तान और इंडिया का जिसमें पाकिस्तान ने बेहतरीन बॉलिंग की थी और इंडिया अंडर प्रेशर आ गया था, वो बारिश की वजह से मैच मुकम्मल नहीं हो सका, तो उसमें हर कोई पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर रहा था। किसी भी इंडियन एक्सपर्ट को एनालिस्ट को चैनल को उठा कर देख ले वो यही बात कर रहा था कि पाकिस्तान की बॉलिंग कमाल की है। अब पता नहीं किसी की नजर लगी जो भी हुआ, लेकिन ये हुआ कि उसके बाद हमारी बॉलिंग बहुत वीक हुई और एक उसका जो थोड़ा सा एक हवा बना हुआ था वो इंडिया ने भी मतलब उतारा। उन्होंने बहुत एग्रेसिव बैटिंग की पाकिस्तानी बॉलरों पर, पाकिस्तानी बॉलर भूल गए अपनी लाइन और लेंथ, मैं तो यही कहूंगा। तो वो जो बॉलिंग थी वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रही। उसके बाद ये हुआ कि हमारा नसीम शाह इंजर्ड हो गए, वो एक ओवर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हुआ। हारिस जो हमारे की बॉलर है वो भी इतना परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन आप ये देखें कि जो मैच हमने श्रीलंका से जीता है वो हमने बॉलिंग पे नहीं जीता बल्कि बैटिंग पे जीता है। बॉलरों ने तो तकरीबन 350 के करीब रन करवा दिए थे लेकिन हमारे बैट्समैनों ने हमें संभाला है। उसके बाद जो आपके बात करी थी कि बाबर आजम, बिल्कुल ठीक है, दुनिया सारी यही कहती है कि बाबर आजम पर टीम चलती है, लेकिन यहां पर मैं जो पाकिस्तान को फाइनल फोर में देख रहा हूं उसकी वजह यह है कि देखिए बाबर आजम ने ना तो पहले मैच में नेदरलैंड के खिलाफ स्कोर किया और ना ही उन्होंने दूसरे मैच में स्कोर किया श्रीलंका के खिलाफ। तो किन्होंने परफॉर्म किया? आपके ओपनर ने परफॉर्म किया, आपके मिडल ऑर्डर रिजवान ने परफॉर्म किया। तो बात यह है कि हमारी टीम में ये जो अच्छी चीज है ना कि एक अगर नहीं चल रहा बाबर आजम पे हम नहीं डिपेंड कर रहे, अभी तो आप बाबर आजम के जब रन ऐड करेंगे तो फिर हम कहीं बेहतर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी टीम में प्लेयर्स ऐसे हैं कि किसी भी दिन कोई एक प्लेयर जो है ना वो मैच मिरर साबित हो सकता है। बॉलिंग में भी ऐसे प्लेयर्स हमारे पास है, अनफॉर्चुनेटली हमारी स्पिन बॉलिंग बहुत कमजोर है। मैं समझता था कि इसमें इब्रार को मौका मिलना चाहिए, वो एक रेगुलर स्पिनर है, हम उसे मौका नहीं दे रहे। मोहम्मद नवाज ज्यादा अच्छा है, शादाब का इस वक्त भी अच्छा टाइम नहीं चल रहा, लेकिन हसन अली ने दोनों मैचों में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो इसलिए पाकिस्तान की टीम वो है, ये अक्सर जो मैचेस ये जीती है ना आप ये देखें ये सिंगल परफॉर्मेंस पे जीतती है। तो इंशाल्लाह उसको देखते हुए इंडिया का मैं मानता हूँ कि उसकी बैटिंग अच्छी चल रही है, उसकी बॉलिंग भी अच्छी चल रही है, उसकी फील्डिंग भी अच्छी चल रही है, लेकिन आप चीज ये भी ध्यान में रखें कि इंडिया अपने क्राउड के सामने खेल रहा है और अपने क्राउड की जहां सपोर्ट आपको मिलती है वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है। जब पूरा स्टेडियम आपको सपोर्ट कर रहा होता है तो वो आपके ऊपर एक प्रेशर भी होता है, और पाकिस्तान के ऊपर वो प्रेशर इतना मेरे ख्याल से नहीं होगा क्योंकि उन्होंने हमारे ना तो विजिटर्स को अलाउ किया जाना, ना हमारे जर्नलिस्ट वहां जा सके। तो पाकिस्तान की टीम को अगर ये प्रेशर इन्होंने ना लिया पाकिस्तान ने, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सैटरडे को भी पाकिस्तान टीम हैरान कर सकती है दुनिया को।
अच्छा ठीक है। अच्छा मेरी प्रोडिक्शन ये है कि सैटरडे का मैच इंडिया जीतेगी, आपकी प्रोडिक्शन है पाकिस्तान जीतेगा सैटरडे का मैच। ओके अच्छा ख्वाहिश है आपकी। ओके और मेरी प्रोडिक्शन है कि इंडिया जीतेगी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, उनकी बैटिंग लाइनअप भी आप देख लें और बॉलिंग भी, हालांकि शुभमन गिल नहीं है फिर भी। अच्छा ये तो ये बात हुई। अच्छा बात आपने अभी की प्रेशर की, आपने कहा जी कि इंडिया के ऊपर प्रेशर होएगा पाकिस्तान पर नहीं। आपको याद है जब वसीम अकरम टीम लेकर इंडिया में गए थे तो वहां पे जो हमारे इंतजाम लग थे उनको कॉन्स्टेंटली वो कह रहे थे आलू आलू, तो उसमें वो प्रेशर जो था वो बैट्समैन पे आ गया था। हालांकि वसीम उसको बार बार जाके बोलता था कि भाई तुम प्रेशर ना लो, तुम अपनी नेचुरल गेम खेलो, लेकिन उसको गुस्सा आ गया था। तो इस तरह के अगर कॉमेंट्स भी आ जाते हैं तो कैसे बैट्समैन के ऊपर तो प्रेशर आ ही जाता है, उनको गुस्सा आ ही जाता है। तो आपको नहीं लग रहा कि पाकिस्तान टीम के ऊपर भी इस तरह से कुछ प्रेशर होंगे अगर लोगों के कमेंट्स आए, हूट उन्होंने किया और इंडिया की टीम को उन्होंने ज्यादा जो है वो चीयर किया। वैसे अभी तक तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा उन्होंने उनको वेलकम किया है, लेकिन उस मैच में तो नेचुरली वो अपनी टीम को ज्यादा चीयर करेंगे, तो बैट्समैन के ऊपर कितना प्रेशर होगा फिर उस वक्त।
देखिए पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम है ना, मतलब मैं चूंकि क्रिकेट खेलता रहा हूं तो मैं उसको डिफरेंट एंगल से देखता हूं। आपने इतनी जेंटलमैन टीम पाकिस्तान की पहले कभी नहीं देखी। मैंने कवर किया है उस वक्त को भी जब शोएब अख्तर खेलते थे, वसीम अकरम तो तकरीबन अपने एंड पर थे, लेकिन अब्दुल रजाक थे, मोहम्मद यूसुफ थे, मैंने इनको कवर किया। आप देखिए उस वक्त जो प्लेयर्स थे ना हमारे, वो मैं समझता इतने सीरियस नहीं थे गेम में, वो अपनी लाइफ को ज्यादा इंजॉय करते थे, वो क्लबों में पहुंच जाते थे फौरन, उनकी एक्टिविटीज बहुत डिफरेंट थी। ये जो टीम है ना, ये बहुत ऑर्गेनाइज टीम है, बहुत ऑर्गेनाइज टीम है, और इसमें वो प्लेयर नहीं है जो प्रेशर लेंगे हूटिंग का। अभी तो वैसे इंडियंस जो आपके तमाशाई हैं, उन्होंने अफगानिस्तान को भी हूट किया है, अफगानिस्तान के भी एक जो प्लेयर है उनको टारगेट किया गया जब वो फील्डिंग कर रहे थे, जब वो बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि उसकी उसके कुछ आर्गुमेंट हुए थे कोहली के साथ एक और इवेंट में। तो लेकिन बात ये होती कि पाकिस्तान का ये जो स्क्वाड है ना, मैं समझता हूँ कि ये कुछ अल्लाह का करम भी है, कुछ जिसने भी इस पर मेहनत की है, चाहे वो मिसबाउल थे, चाहे वो इंजमाम थे या सकलैन मुश्ताक है, उन्होंने टीम को मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाया। अगर आपने मैथ्यू हेडन जो मतलब हमारे टीम के साथ काम कर रहे हैं कोच के तौर पे, बैटिंग कोच, उनके अगर आप कमेंट्स देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। वो बंदा ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई मुसलमान बात कर रहा है, और वो कह रहा था कि इस टीम का जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, उसने इस टीम को इतना मजबूत बना दिया मेंटली कि वो कहता है कि मैं हैरान हूं कि ये क्या हूं। उन्होंने बहुत ज्यादा देर तक इस्लाम के मुतालिक बात की, और ये अभी पीछे कोई मैच था उसके दौरान लाइव ये वो गुफ्तगू कर रहे थे, एज ए कमेंटेटर बात कर रहे थे उस वक्त। तो बात ये कि ये आप पर तमाशा ही ठीक है, ऑल क्राउड उन्हीं का होगा, लेकिन पाकिस्तान माजी में भी इंडिया में जाकर इंडिया को हरा कर आया, उस वक्त भी जबकि हमारे जो प्लेयर जिनको मैं इतना सीरियस नहीं समझता था, लेकिन ये जो टीम है उसमें आप रिजवान को देख लें, उसमें आप बाबर आजम को देख लें, उसमें आप अब्दुल्ला शफीक को देख लें, इवन आप मैं बात करता हूँ जो हमारे इफ्तिखार अहमद है उनको देख लें, ये सब प्लेयर बहुत स्ट्रांग है। इन पर आप ये कह रहे हैं लाख शूटिंग कर लें आप, ये इनका फोकस इनकी गेम ही रहती है। सिर्फ ये है कि आप जो बात करेंगे इंडिया बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप ये देखेंगे बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जो टीम जितनी स्ट्रांग होती है वो आजकल उतना ही बड़ा कोलैप्स भी होता है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि इंडिया अगर स्ट्रांग है तो वो एक ऐसे नॉन स्टॉप विन करेगी। अभी इंडिया का एक अच्छा आगाज हुआ है, लेकिन पाकिस्तान से खेलते हुए हमेशा वो भी बहुत मोहतात रहते हैं, उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान टीम अनप्रेडिक्टेबल है। और आप देख लेंगे जो अपने अपनी तारीख की इंडिया सबसे बड़ी गेम्स हार रहा है वो पाकिस्तान से हार रहा है, जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी हारी थी उसमें पाकिस्तान ने उनको 180 पर आउट किया था, जबकि पाकिस्तान ने 350 रन किए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया को 10 विकेटों से हराया था, जिसमें रिजवान और बाबर ने मिलकर तकरीबन 152 चेस किया था। तो ये नहीं कि इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है तो वो पाकिस्तान को बिल्कुल यानी इजीली ले जाएगी, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान को पता है कि एक्सपेक्टेशन है, पाकिस्तान को ये भी पता है कि हमने वर्ल्ड कप में इनको कभी नहीं हराया, तो मैं इंशाल्लाह बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि इस दफा पाकिस्तान टीम बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी।
अच्छा जी बिल्कुल, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है कि पहले तो ये लोग खेल रहे थे मैचेस हैदराबाद में और अब ये जा रहे हैं अहमदाबाद, तो जो कंडीशंस हैं उनका जरा बताएं कि वो कंडीशंस और पिच जो है वो किसको ज्यादा फेवर करेगी, बैट्समैन को या बॉलर्स को, और फिर हम आपके साथ फिर से कल कनेक्ट होंगे और ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बट फॉर टुडे हम ये अपना एब्सोल्युटली लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं।
जी, इसमें देखिए मतलब मैं अपना फेसबुक पे मेरा एक पेज है जिसपे मैं पोस्ट करता हूँ, तो उस पर कल ही मैंने ये पोस्ट की उस हवाले से। मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही है कि हम लोग हैदराबाद में दो मैचेस जीत कर अहमदाबाद जा रहे हैं, ये नाम बहुत ज्यादा मिलते जुलते से हैं, हैदराबाद अहमदाबाद, और मुझे मेरी एक इनर फीलिंग है कि इंशाल्लाह ये अहमदाबाद पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब अगर विकेट की बात करें तो इंडिया में आप देख ले कि विकेट जो बनाई गई है ना, सिवाय आप ऑस्ट्रेलिया का मैच निकाल कर जो हुआ है इंडिया के साथ, अब मुझे नहीं पता कि उसमें उन्होंने कोई ट्रिक किया है, कोई ऐसी गेम मतलब की है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पूरे 50 ओवर्स खेले और सिर्फ 199 रन बनाए। ये आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से तोको नहीं कर सकते, या तो उन्होंने कि 25 ओवर में टीम आउट हो गई 199 बनाकर बात और है, पूरे 50 ओवर खेलकर आपने 200 रन किए बमुश्किल। तो ऐसे अगर वो विकेट बनाते हैं ये तो लास्ट मिनट की कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त वर्ल्ड कप में जो इंडिया में विकेटें बनी अभी तक वो सब के सब यानी आप ये कह लें कि बैट्समैनों को फेवर कर रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो विकेट वो बनाएंगे वहां पर वो लाजमत इंडिया ये चांस नहीं ले सकते। उन्हें पता कि शाहीन है, जख्मी शेर है, मतलब वो अभी इतना फिट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि एक एग्रेशन होता है, खास जज्बा पैदा हो जाता है खिलाड़ियों में जब वो इंडिया के साथ खेल रहे होते हैं, उस वक्त वो गिरते पड़ते भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, और इंशाल्लाह हारिस है, मतलब मुझे उम्मीद है कि हारिस उस दिन कुछ बेहतर करेगा जरूर, हारिस और शाहीन दोनों। तो इसलिए जो विकेट्स है ना वो मोस्टली इंडिया में बैटिंग फ्रेंडली है, अहमदाबाद की पिच भी बैटिंग फ्रेंडली है, और मुझे उम्मीद है कि बड़े रन बनेंगे, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मतलब कितना टारगेट जो है ना वो प्रोटेक्ट कर सकता है किसी टीम को। इसमें बात घूम कर फिर वही आ जाती है कि जो टीम पहले 10 ओवर्स में अपनी ग्रिप बना लेगी वही टीम जो है ना वो मैच जीतेगी।
थैंक यू वेरी मच कैसर, दिस इज ऑल द टाइम दैट वी हैव टुडे, वी विल कनेक्ट विद यू वंस अगेन टुमारो। कैसर कल हम आपको अपने स्टूडियो में देखेंगे और बहुत डिटेल में एक तो इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है उसके ऊपर बात करेंगे, जो हमारे मैचेस साथ में होते रहे हैं, और फिर जो ये क्रिकेट डिप्लोमेसी बंद हो गई है, एक दूसरे के जो मुल्कों में जाना खत्म हो गया इंडिया पाकिस्तान का, उसके ऊपर कल हम डिटेल से बात करेंगे, बट बाय फॉर नाउ, बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉमेंट्स।
शाजी जी थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे स्टूडियो में।
यू आर वॉचिंग ई आवाज।
जी बिल्कुल, तमाम सामने जो हमें 770 डायल पे सुन रहे हैं, ये था हमारा स्पोर्ट्स सेगमेंट। आज मुझे आमिर अहमद को और हमारी पूरी साजो आवाज की टीम को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही तो आपके साथ फिर इसी प्रोग्राम में दोबारा शामिल होंगे, उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world, in words and in music.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। Radio 770 AM, Voice of Community. For more details, visit eawaz.com.
तेरे संग लागी प्रीत मोहे रू बार बार तेरा नाम ले के रब से मांगी यही दुआ तू हाथों की लकीरें थाम ले संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं कि संग तेरे बादलों सा बादलों सा बादलों सा उड़ता रहूं तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं के संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं। तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं के संग तेरे बादलों सा बादलों सा बादलों सा उड़ता रहूं। तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं। कश्ती का साहिल बना दिया बेचैनियां समेट के सारे जहान की जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया ओ साथी
हो, मिलती है जो अचानक वो सौगात हो। तुम तो दरअसल मीठी सी प्यास हो, लगता है ये हमेशा के तुम आस पास हो। ठहरा है जो लबों पे वो एहसास हो, तेरी अदा अदा पे मरता मैं, वफा वफा सी करता क्यों, हदों से हूँ गुजरता मैं। जरा 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 तुम तो दरअसल सांसों का साज हो, दिल में मेरे छुपा जो वही राज राज हो। कल भी मेरा तुम ही हो मेरा आज हो, कल भी मेरा तुम ही हो मेरा आज हो। बारिश का पानी हो तुम, कागज की कश्ती हूँ मैं, तुझ में कहीं मैं बह जाता हूँ। हो मिलने हूँ तुमसे आता, वापस नहीं जा पाता, थोड़ा वहीं मैं रह जाता हूँ। हो तुमको दरअसल एक नया को देखकर लगता हसी है सारा शहर। वो अब देख तेरा होकर ऐसा असर है मुझ पर, हंसता रहूं मैं आठों पहर। हो फसानों में तुम बार बार हो, इनकार में जो छुपा है वो इकरार हो, इनकार में जो छुपा है वो इकरार हो, इनकार में जो छुपा है वो इकरार हो।
रस्म वफा है जो दिल पे नशा
कई चाहते हुई मेहरबान बढ़ के थामती एक वो नजर एक वो निगाह रूह में शामिल इस तरह बन गया अफसाना एक बात ते के हसीन धागों में कहीं पिरो रहा हूं कब से मैं हुजूर कोशिशें जरा है निगाहों की तुझे देखने की हो खता जरूर दीवानगी कहूं से या है मेरा फितूर कोई कैसे दूर तुझसे मैं रहूं तेरा
फिक्र है। खामोशियां जो सुन ले मेरी, इनमें तेरा ही जिक्र है। ख्वाबों में जो तू देखे मेरे, तुझसे ही होता इश्क है। उल्फत कहो इसे मेरी, ना कहो है मेरा कसूर कोई।
के आशियाने में तू चाहिए, मैं खोलूं जो आंखें सिरहाने भी तू चाहिए।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Real estate di duniya vich thodi kamyabi, executive homes realty, jithe tusi 1.5 lakh to 2 lakh saal da kama sakde ho, is to alawa free buyer and seller leads, VIP access to pre-construction projects, one-on-one sales and marketing mentorship, teach and train program, state-of-art modern office, with private room, in-house mortgage and loyals team, in-house projects investment opportunity. Fir der kadi, aao te join karo Executive Homes Realty ya call karo 905-890-1300 ya visit karo ehrb.ca.
ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਮਰ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਚੁਰਲ ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 7 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਕਲਰ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਥ ਟੱਬ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਕਲਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹਨੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ desicanadian.com ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਰਾਮਾ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 519-569-9982 519-569-9282.
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵੈਂਚਰ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਗੋਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ